मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के रूप में कल के ही टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि उत्तर कैसे लिखा जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले जो कुछ दूसरी खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। आज के अखबारों में एक खबर बहुत ही प्रोमिनेंटली छपी है और वो यह है कि देश में किस तरीके से जो आतंकी नेटवर्क है बड़ा हाईटेक नेटवर्क है। हाईटेक नेटवर्क कहने का मतलब है कि ये जो आतंकवादी होते हैं आपस में बातचीत करते हैं। देखिए, जब बातचीत की जाती है तो उसे तो बकायदे जाना जा सकता है, पकड़ा जा सकता है कि कौन किससे क्या बात कर रहा है। लेकिन हाईटेक का मतलब है कि आपस में बातचीत कर रहे हैं लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो इसके बारे में अभी पता लगाया गया है, जो हमारे NIA है उसने पता किया है कि बेसिकली ये जो आतंकवादी हैं ये आपस में बात करते हैं और ये सब इस तरह के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं कि उसके लिए वो एक मोबाइल ऐप डेवलप करते हैं। बात खत्म हो जाती है तो वो उस मोबाइल ऐप को ही नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब आपके पास कोई तरीका नहीं रह जाता कि आप इनकी बातचीत को पकड़ सकें। इसे कहा है उन्होंने हाईटेक आतंकी नेटवर्क। क्लियर हो गया, मतलब इस शब्द का अर्थ आपको मालूम हो गया होगा। इसी न्यूज में एक शब्द का उपयोग किया गया, स्लीपर सेल, कि ये जो हाईटेक जो नेटवर्क इन्होंने तैयार किया हुआ है इससे दो संस्थाएं, दो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी। ISIS के बारे में हम लोग कल बात कर चुके हैं, अलकायदा के बारे में आप जानते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर के भारत में जबरदस्त रूप से स्लीपर सेल का जाल बिछा रहे हैं और काफी कुछ इन्हें सफलता मिल गई है। स्लीपर सेल, शायद आप इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट न जानते हों जो नई तैयारी करने अभी लगे हैं। स्लीपर सेल बेसिकली होता यह है कि जैसे कोई एक आतंकवादी है, अब वो किसी मोहल्ले में जाकर के किसी के घर में रह रहा है। अब किसी को नहीं पता कि ये क्या है क्या नहीं है, वो वहां रहता है, लोगों से मिलता जुलता है, लेकिन गतिविधियां उसकी आतंकवादियों वाली होती हैं और बकायदे जिस घर में वो रह रहा है वो घर उसे प्रश्रय दे रहा है। हो सकता है कि उसे मालूम हो, लेकिन वो इतना छुपा हुआ रहता है या यूं कह लीजिए कि अननोन सा रहता है कि कोई उस पर डाउट नहीं कर सकता। अब ऐसे लोगों को आप कैसे पकड़ेंगे? अपनी गतिविधियों को अंजाम देते रहेंगे, सूचनाएं वो संगठन को पहुंचाते रहेंगे। और बकायदे ये जो दोनों संगठन हैं, ये छोटे छोटे भारत में जो दुनिया भर के संगठन का जाल इन्होंने फैला रखा है उसकी फंडिंग करते हैं। फंडिंग के माध्यम से ये जो पैसा है ये स्लीपर सेल और जो दूसरे तरह की जो आतंकवादी गतिविधियों में लोग लगे हुए हैं वहां पहुंच जाता है। ये बकायदे अपने ढंग से पहले जो युवा हैं उनको मैसेज भेजते हैं ताकि समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनके मन में नफरत का भाव पैदा हो जाए। जब उन्हें लगता है कि इनके मन में नफरत का भाव पैदा हो गया है तो फिर धीरे धीरे वो कट्टरता बढ़ाने वाले वीडियो संदेश भेजना शुरू कर देते हैं ताकि इनमें कट्टरता की भावना पैदा हो जाए। और जब उन्हें लगता है कि नहीं, इनमें अब कट्टरता की भावना पैदा हो गई है, या यूं कह लीजिए कि ये जो युवा है ये कट्टरपंथी बन गया है, फिर उसकी ब्रेन वॉशिंग शुरू की जाती है। मतलब ये इनके कार्य करने की एक पद्धति है। आज के अखबारों में ये है, इसे आप देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसको लेकर के शायद एक दो दिनों में जरूर कुछ न कुछ एडिटोरियल कमेंट्स या एडिटोरियल आर्टिकल्स आएंगे, उस समय मैं हो सका तो आपसे इस पर और बातें करूंगा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें एक है बिजनेस स्टैंडर्ड का शहरीकरण पर और दूसरा भी बिजनेस स्टैंडर्ड का ही है, खासकर फूलों की खेती के ऊपर। मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों आर्टिकल्स को बहुत ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं उन्हें आप नोट भी कर लें। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। देखिए, जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ चीजें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी दो आर्टिकल की बात कही। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दो आर्टिकल्स में से मैं आपको एक को चुनने को कहता हूं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की दृष्टि से इसमें से केवल एक आर्टिकल आपको पढ़ने को दिया जाएगा, तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि इन दोनों में से महत्वपूर्ण कौन है, नंबर वन कौन है और नंबर टू कौन है। देखिए, आप इतने अखबार पढ़ते हैं, इतने न्यूज सुनते हैं, मैगजीन्स में भी दुनिया भर के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, यहां तक कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें भी आप इतने सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में यह स्पष्ट तो होना ही चाहिए ना कि इसमें से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है और कौन बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है ताकि वो कंटिन्यूटी बनी रहे सब्जेक्ट, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। तो जैसे अभी मैंने दो आर्टिकल्स की बात कही है, तो अगर आप लगभग लगभग 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, या चलिए मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपके अंदर ये कैपेसिटी आ जानी चाहिए कि इन दोनों में से महत्वपूर्ण कौन है, इसका बहुत सही सही अंदाजा लगा सकें। और अगर आपका उत्तर है कि शहरीकरण वाला जो आर्टिकल है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही हैं। फिर आप पूछ सकते हैं, सर फिर ये फूलों की खेती वाला आप क्यों दे रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा है कि जो दूसरा आर्टिकल है वो बेकार है, कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर से संबंधित है। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि आप बताना चाह रहे हैं कि किसान कैसे अपनी आय बढ़ाएं, कैसे हम अपनी उत्पादकता को बढ़ाएं, तो ये जो फूलों की खेती के बारे में आर्टिकल है आपको कुछ पॉइंट्स प्रोवाइड कर देगा, इसलिए खासकर मैं यह आर्टिकल भी आपको दे रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा कि शहरीकरण का जो आर्टिकल है वो डेफिनेटली बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप मेंस के पेपर उठा करके देखें तो 1-2 क्वेश्चन बकायदे अर्बनाइजेशन पर, शहरीकरण पर होते ही है, लेकिन ये नहीं होता शहरीकरण किसे कह रहे हैं और वहां की क्या क्या समस्याएं हैं। ये युग बीत चुका, अब यह युग नहीं रह गया है। वर्तमान में शहरीकरण हो जाने के बाद जो हमारे शहर हैं वो जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उन पर प्रश्न आते हैं, और फिर जूझते हुए शहरीकरण का निदान क्या है कि कैसे उन समस्याओं पर विजय प्राप्त की जाए, सरकार क्या कर रही है और क्या किया जाना चाहिए। अब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं मालूम होना चाहिए कि शहरीकरण क्या होता है और इसकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या इसकी अच्छाइयां हैं। उसके बिना तो फिर आप सेकेंड पार्ट को समझ ही नहीं सकेंगे। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। देखिए इसमें डेटा भरे हुए हैं, लेकिन आप डेटा के चक्कर में मत पड़िएगा, ज्यादा डेटा किसी काम के नहीं होते हैं, 1-2 डेटा ही काम के होंगे, और मैं जानबूझ करके उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं ताकि आप खुद अपने हिसाब से निकाल सकें, राइट। दोस्तों अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं, और आज के अपने इस विषय को अगर मैं कोई शीर्षक देना चाहूं तो मैं शीर्षक दूंगा उत्तर का बीज तत्व। बीज तत्व यानी कि जब हम उत्तर लिख रहे होते हैं, कल मैंने प्रश्न को समझने की बात कही थी, आपको एक होमवर्क भी दिया था, मुझे विश्वास है कि उस पर आपने काम किया होगा। तो जब हम उत्तर लिख रहे होते हैं तो उसका एक बीज होता है, सीड होता है, बीज तत्व मैंने उसे ही कहा है, जिसे बोलचाल की भाषा में आप यूं कह लीजिए कि जब इमारत खड़ी करते हैं तो उसकी एक नींव होती है, लेकिन नींव से ज्यादा अच्छा शब्द बीज है। बीज जैसा होगा, जिसका बीज होगा, उससे उसी तरह का पौधा निकलेगा। अगर आपने चने का बीज लिया है तो उसे चने का पौधा निकलेगा, अगर आपने आम का बीज लिया है तो उसमें आम का पौधा निकलेगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर उत्तर लिखते समय आपका बीज तत्व गलत हो गया तो पूरा उत्तर ही गलत हो जाएगा, इसीलिए मैंने स्पेशली बीज तत्व शब्द का प्रयोग किया है। ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां मात खा जाते हैं और बुरी तरह से मात खाते हैं। मैंने भी आंसर राइटिंग ही नहीं की है बल्कि आंसर चेक भी किया, ठीक है मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की कॉपियां नहीं जांची हैं मैंने, लेकिन दूसरे एग्जामिनेशन की कॉपियां जांची हैं। स्टूडेंट से सामने आमने सामने बातचीत की है कि ठीक है इसका उत्तर बताओ, इसके उत्तर की शुरुआत कैसे करोगे या इस प्रश्न को कैसे समझोगे, इसमें क्या कहा गया है, क्या मांगा गया है, और मैं देखता हूं कि वो समझने में ही गड़बड़ी कर जाते हैं। और जब समझने में ही गड़बड़ी करेंगे तो सीधी बात है कि उस गड़बड़ी के अनुकूल ही आप उत्तर को ढालेंगे, वही आपका बीज तत्व होगा। तो कल का जो प्रश्न था, जो पहले प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं कि प्राकृतिक खेती करना धरती मां की सेवा करना है, इस कथन के प्रकाश में कल मैंने अंडरलाइन किया था सेवा भाव को परिभाषित कीजिए। अब बीज तत्व निकालने के लिए अब आप उस कथन को पढ़िए कि प्राकृतिक खेती करना किस तरीके से धरती मां की सेवा करना हो गया, तो बीज तत्व क्या निकल रहा है। चलिए मैं अब आज बता ही देता हूं, हो सकता है कि आपका मैच करे, और इस अगर मैच किया तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। देखिए प्राकृतिक खेती के अगेंस्ट में अभी हम क्या कर रहे हैं, अप्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उसमें यूरिया डाल रहे हैं, सुपर फास्फेट डाल रहे हैं, उसमें कीटनाशक दवाइयां डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ये अप्राकृतिक खेती हो गई। इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि जो मिट्टी है अनुर्वरक होती चली जा रही है, यानी कि जो धरती है, यहां मिट्टी और धरती को एक जैसा मान करके चले, तो उसका क्षरण हो रहा है, उसकी जो शक्ति है वो खत्म हो रही है, प्राकृतिक शक्ति उसकी खत्म हो रही है। चलिए हम उस दूसरे पर नहीं जाते कि इससे हमें कितना नुकसान हो रहा है, किस तरीके का अनाज पैदा हो रहा है, उस पर नहीं जाते। लेकिन कहीं ना कहीं मिट्टी का क्षरण हो रहा है, उसकी गुणवत्ता खत्म हो रही है, मिट्टी मिट्टी नहीं रह जा रही है। अब प्रधानमंत्री ने क्या कहा है कि आप प्राकृतिक खेती कीजिए। तो जब प्राकृतिक खेती करेंगे तो क्या होगा? जब आप प्राकृतिक खेती करेंगे तो मिट्टी का क्षरण रुक जाएगा, जो मिट्टी है, जो धरती है, वो अपने प्राकृतिक रूप में, नेचुरल फॉर्म में आ जाएगी, उसका नष्ट होना थम जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अब हम बीज तत्व पर आते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जब हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो एक प्रकार से हम धरती माता की रक्षा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, उसे बचा रहे हैं, धरती को बचा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो बीज तत्व है इसके उत्तर लेखन का, वह होगा रक्षा करना, यानी कि रक्षा करना ही सेवा करना है। अब आपको इसे परिभाषित करते हुए और फिर स्पष्ट करना होगा कि क्या दूसरे क्षेत्रों में भी कुछ ऐसा है कि हम रक्षा करने को सेवा भाव के रूप में लेते हैं। एक सैनिक के बारे में आपका ख्याल क्या है? सैनिक किस तरह से राष्ट्र की सेवा करता है? अब आप इसे जोड़ करके अपनी बात 100 शब्दों में लिख दीजिए। अगर आप रक्षा से जरा सा भी भटक गए तो मान करके चलिए कि फिर आपका उत्तर गलत होना ही होना है, उसमें आपको कोई बचा नहीं सकता, कोई तर्क आपके पक्ष में आपकी मदद नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज जो हमने बीज तत्व की बात की है, शायद आपको थोड़ा सा उत्साहजनक लगा होगा और आपको अपनी कमी अगर रही होगी तो को समझने में और पकड़ने में मदद मिली होगी। तो फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं, महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से और मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।